एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
तो आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतर रहे हैं जिन्होंने मनोरंजन की दुनिया में अपनी शर्तों पर जगह बनाई है। लॉरेन कियाना खेखे पामो, अभिनेत्री, गायिका, होस्ट, उद्यमी, मतलब लगता है ऐसा कुछ है नहीं जो उन्होंने किया ना हो।
हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है उपलब्धियों की। केके पामर की कहानी असल में आत्म खोज की है, अपनी पहचान को गढ़ने की और अपनी कहानी का मालिक खुद बनने की कहानी है। ये जानना काफी दिलचस्प है कि कैसे एक यंग अश्वेत महिला ने हॉलीवुड के प्रेशर्स, उम्मीदों के बीच अपना रास्ता बनाया।
बिल्कुल, और इसी सफर को समझने के लिए हम उनकी 2017 की किताब है ना, आई डोंट बिलोंग टू यू, क्वाइट द नॉइस एंड फाइंड योर वॉइस, उसके विचारों को देख रहे हैं। किताब का नाम ही देखिए, अपने आप में घोषणा है।
हाँ बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है उनका लाइफ का फलसफा, जिसे हम कह सकते हैं स्वयं का स्वामी या मास्टर ऑफ मी। हालांकि ये किसी अलग किताब का नाम नहीं है, पर ये उनके जीवन का सेंट्रल आइडिया है।
हाँ, और ये विचार आज के टाइम में मुझे लगता है बहुत रेलिवेंट है, जहाँ सोशल मीडिया है, बाहरी दबाव है, अपनी असली पहचान बनाए रखना ही एक चैलेंज है।
बिल्कुल, इलिनॉय के एक छोटे से शहर रॉबिन से निकलकर चाइल्ड स्टारडम, फिर नस्लीय और लैंगिक स्टीरियोटाइप्स, इन सबको पार करते हुए वो आज एक ऐसी फोर्स हैं जो बाहरी मान्यताओं से बंधी नहीं है। उनकी यात्रा प्रेरणा भी देती है और हाँ, सोचने में भी मजबूर करती है।
तो फिर चलिए उनकी इस यात्रा को जरा शुरू से समझते हैं। इलिनॉइस के वो शुरुआती साल जहां ये सब शुरू हुआ, कैसा था वो माहौल, उनका बचपन?
केके पामर का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1993 को हार्वे, इलिनॉय में, और पली बढ़ी वो शिकागो के पास रॉबिन्स में। उनके पेरेंट्स शेरन और लैरी पामर, उनकी मुलाकात ड्रामा स्कूल में हुई थी।
अच्छा, तो मतलब आर्ट्स का कनेक्शन तो था घर में।
हाँ, रुझान तो था, लेकिन साथ ही एक वर्किंग क्लास फैमिली की रियलिटीज भी थी। पिता एक पॉलीयुरेथेन कंपनी में काम करते थे और माँ, जो खुद एक्टिंग में जाना चाहती थी, उन्होंने परिवार के लिए अपने सपनों को होल्ड पर रख दिया।
अच्छा, तो घर में ही ये महत्वाकांक्षा और जिम्मेदारियों का एक मिक्सचर देखने को मिला होगा उन्हें, और छोटी उम्र से ही, 5 साल की उम्र से उन्होंने चर्च में गाना शुरू कर दिया था।
हाँ, लगता है माँ के वो अधूरे सपने और शायद परिवार की आर्थिक चुनौतियां भी थी, उन्होंने कम उम्र में ही उन्हें काफी मजबूत बना दिया, लचीलापन सिखाया।
और कोई खास पल बचपन का जिसने दिशा दी हो?
बिल्कुल, एक निर्णायक पल आया जब वो 9 साल की थी, शिकागो के लिंकन थिएटर में मशहूर म्यूजिकल द लायन किंग के लिए ऑडिशन दिया।
ओ, लायन किंग!
हाँ, चुनी तो नहीं गई, पर वो जो अनुभव था, उसने जैसे एक चिंगारी लगा दी, और इसी के बाद उनके परिवार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया।
क्या
था? और इसने केके में एक मकसद की भावना और जिम्मेदारी का एहसास भी जगाया होगा।
कैलिफोर्निया आना करियर के लिए तो बड़ा कदम था, लेकिन यहीं से शायद असली स्ट्रगल भी शुरू हुआ होगा। एक बच्चे का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होना, पढ़ाई का अलग तरीका, होम स्कूलिंग, सेट पर ट्यूटरिंग।
हाँ वो तो है, ये एक आम चुनौती है चाइल्ड एक्टर्स के लिए, अलगाव महसूस हो सकता है, पहचान को लेकर कंफ्यूजन। केके ने भी ये सब अनुभव किया। फिर 13 साल की उम्र में 2006 में आई फिल्म अकीला एंड द बी।
हाँ, वो फिल्म,
उससे उन्हें देश भर में पहचान मिली। लॉरेंस फिशबर्न और एंजेला बैसेट जैसे बड़े नामों के साथ काम करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इसके साथ ही भारी उम्मीदों का बोझ भी आया।
पब्लिक में बड़े होने का प्रेशर?
बिल्कुल, उन्हें बहुत जल्दी सीखना पड़ा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस को कैसे मैनेज करें और साथ ही अपने अंदर के असली स्व को कैसे बचाए रखें। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म बन गया।
और फिर आया वो मुश्किल दौर जब उन्हें चाइल्ड स्टार के लेबल से निकलकर एक अडल्ट एक्टर के तौर पर खुद को साबित करना था। निकलोडियन का शो था ना ट्रू जैक्सन वीपी, वो तो बहुत हिट था।
हाँ, 2008 से 2011 तक चला और वो उस समय की सबसे ज्यादा कमाने वाले बाल कलाकारों में से एक थी।
अच्छा, फिर भी दिक्कत आई?
हाँ, शो खत्म होने के बाद इंडस्ट्री उन्हें अब भी बच्ची ही समझ रही थी, अडल्ट रोल्स मिलना मुश्किल हो रहा था। ये चाइल्ड स्टार कर्स वाली बात काफी एक्टर्स के साथ होती है।
सही कहा, ये तो बड़ा क्राइसिस रहा होगा उनके लिए, पहचान का संकट।
बिल्कुल, ये उनके लिए पहचान के संकट का दौर था, चिंता थी, सेल्फ डाउट था, करियर को लेकर अनिश्चितता थी, लेकिन शायद यही वो मुश्किल दौर था जिसने उन्हें अंदर से और मजबूत बनाया। यहीं से वो सोच पैदा हुई होगी कि अगर इंडस्ट्री उन्हें वो रोल्स नहीं दे रही जो वो चाहती हैं, तो उन्हें खुद अपनी कहानी लिखनी होगी। किसी और के बनाए रास्ते पे नहीं चलना, अपना रास्ता खुद बनाना।
और उन्होंने रास्ता बनाया भी। क्या जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपने काम में विविधता लाई। एक्टिंग में देखिए स्क्रीम क्वींस, हसलर्स और फिर जॉर्डन पील की वो फिल्म नोप।
बिल्कुल,
2022 में क्या कमाल का परफॉर्मेंस था।
बिल्कुल, और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, संगीत में भी हाथ आजमाया। पहला एल्बम सो अनकूल 2007 आया था, फिर बाद में इंडिपेंडेंट रिलीज भी किए, होस्टिंग की GMA 3 जैसे शोज, यहां तक कि 2014 में ब्रॉडवे पे सिंड्रेला बनी।
हाँ, और वो पहली अफ्रीकी अमेरिकन सिंड्रेला थी ब्रॉडवे पर, इतिहास बना दिया।
सही का, ये उनकी जिद दिखाता है कि वो सीमाओं को नहीं मानती। टाइपकास्टिंग को तोड़ा और साबित किया कि वो कितनी वर्सेटाइल हैं। और फिर डिजिटल दुनिया में उनकी पकड़, सोशल मीडिया पर उनका जो अंदाज है, एकदम बिंदास असली।
हाँ, वो सॉरी टू दिस मैन वाला मीम तो मतलब कौन नहीं जानता।
वही, वो वायरल मोमेंट्स, लोग उनके किरदारों से नहीं, उनके असली पर्सोना से कनेक्ट करने लगे। उन्होंने अपनी मीडिया कंपनी की TV भी शुरू की।
हाँ, ताकि दूसरे उभरते कलाकारों को मंच मिल सके। कमाल है।
बिल्कुल, मतलब वो सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं रही, बल्कि एक कल्चरल फोर्स बन गई। अपने मंच का इस्तेमाल सामाजिक मुद्दों पर बात करने, कम्युनिटी बनाने के लिए भी किया।
और निजी जिंदगी में भी उन्होंने अपनी चुनौतियों को छुपाया नहीं, ये भी बड़ी बात है। थेरेपी लेने की बात हो या PCOS के साथ उनका स्ट्रगल।
हाँ, PCOS, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो एक हार्मोनल कंडीशन है जिससे बहुत सी महिलाएं जूझती हैं, या फिर चिंता और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे, उन्होंने खुलकर बात की।
ये बहुत हिम्मत का काम है, खासकर पब्लिक फिगर के लिए।
यकीनन, और 2023 में माँ बनना, बेटे लियो का जन्म, वो उनके जीवन में एक और नया चैप्टर लेके आया। उसने उनके नजरिए को और भी बदला। तो ये पूरी यात्रा दिखाती है कि वो लगातार सीख रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं।
वाकई एक असाधारण सफर है, और इसी सफर से निकलकर आता है उनका वो मूल दर्शन जिसकी हम बात कर रहे थे, अपनी कहानी का मालिक खुद बनना। जरा इस पर और बात करते हैं, ये नैरेटिव ओनरशिप क्या है असल में।
हाँ, उनका जो सेंट्रल आइडिया है नैरेटिव ओनरशिप, मतलब ये कि आपकी कहानी, आपकी पहचान, आपकी जिंदगी की दिशा कोई और तय नहीं करेगा। न कोई नेटवर्क, न स्टूडियो, न समाज, न ही फैंस की उम्मीदें। आप खुद तय करेंगे कि आप कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं।
और उनकी किताब का टाइटल आई डोंट बिलोंग टू यू, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, ये इसी सोच का सीधा एक ऐलान है, बाहरी दबाव से अपनी आजादी का दावा।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ी है वो बिग बॉस वाली मानसिकता। इसका मतलब सिर्फ बॉस बनना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी, अपने फैसलों, अपनी खुशी की पूरी जिम्मेदारी लेना, चाहे हालात कैसे भी हों। ये मानना कि आप अपनी कहानी के डायरेक्टर हैं, सिर्फ एक एक्टर नहीं।
दिलचस्प, और इसमें वो स्ट्रेटेजिक ऑथेंटिसिटी की बात भी करती हैं, रणनीतिक प्रामाणिकता, ये क्या है?
हाँ, ये थोड़ा सुनने में कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर ये बहुत प्रैक्टिकल सोच है। मतलब ये नहीं कि आप अपनी हर निजी बात दुनिया को बता दें, बल्कि ये कि आप जो दुनिया को दिखा रहे हैं उसमें सच्चाई हो, आप असली रहें, लेकिन साथ ही आप पेशेवर दुनिया की वास्तविकताओं को भी समझें, स्मार्ट बने।
तो ये जिंदगी की जटिलताओं को स्वीकार करने जैसा है कि आप एक ही समय में कई चीजें हो सकते हैं, मजबूत भी, वल्नरेबल भी, प्रोफेशनल भी, पर्सनल भी।
एग्जैक्टली, बाइनरी थिंकिंग को रिजेक्ट करना।
और इन सबके पीछे उनकी प्रेरणा क्या है?
एक तो अपनी रचनात्मकता को बिना किसी बंधन के एक्सप्रेस करने की इच्छा। दूसरी, लोगों से कनेक्ट करने की, उन्हें एम्पावर करने की गहरी चाहत। और तीसरी, अपने परिवार और समुदाय के लिए एक सुरक्षित भविष्य, अवसर बनाने की जरूरत। उनका जो विश्वास है, फेथ है, और थेरेपी जैसे टूल्स, ये भी सफर में उनके लिए महत्वपूर्ण रहे।
उनकी जिंदगी में इतने सारे अनुभव रहे हैं, इतने उतार चढ़ाव। अगर हमें 3 सबसे अहम मोड़ चुनने हों जिन्होंने वाकई उनकी दिशा बदल दी, तो वो कौन से होंगे?
3 मोड़। मेरे ख्याल से पहला तो होगा 2006 में एकीला एंड द बी में कास्टिंग होना।
हाँ, वो तो बनता है।
सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र, मेन रोल, और वो भी लॉरेंस फिशबर्न, एंजेला बैसेट जैसे लेजेंड्स के साथ। ये इसलिए अहम था क्योंकि ये उनके परिवार के कैलिफोर्निया आने के रिस्क का फल था। इसने उन्हें एक सीरियस एक्ट्रेस के तौर पर एस्टैब्लिश किया, और साथ ही एक यंग ब्लैक लड़की को लीड रोल में देखना उस समय रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से भी बहुत बड़ी बात थी।
सही, उसने आगे के दरवाजे खोले होंगे, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ाई होगी, रोल मॉडल बनने का प्रेशर।
बिल्कुल, वो उनके पब्लिक लाइफ की असली शुरुआत थी। दूसरा मोड़ मेरे हिसाब से निकोलोडियन के बाद का वो संक्रमणकालीन संघर्ष था। लगभग 2011-2013 का समय।
हाँ, वो मुश्किल दौड़ जिसकी हमने बात की।
वही ट्रू जैक्सन वीपी के सफलता के बाद अडल्ट रोल्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। इंडस्ट्री उन्हें अब भी 3 स्टार ही देख रही थी। ये उनके लिए पहचान के संकट का, चिंता का, अनिश्चितता का समय था। लेकिन यही संघर्ष ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हुआ। इसी ने उस स्वयं का स्वामी वाले दर्शन को जन्म दिया, उसे मजबूत किया।
अच्छा।
उन्हें एहसास हुआ कि अपनी कहानी अब उन्हें खुद ही लिखनी होगी, कोई और उनके लिए नहीं लिखेगा। इस अनुभव ने उन्हें और रेजिलिएंट बनाया, स्ट्रैटेजिक बनाया, सेल्फ एडवोकेसी सिखाई। ये उनकी अडल्ट सक्सेस की नींव बनी।
यानी मुश्किलों ने ही उन्हें अपनी असली ताकत पहचानने में मदद की। और तीसरा मोड़, मुझे लगता है वो सोशल मीडिया और उनकी वायरल ऑथेंटिसिटी से जुड़ा होगा।
आप सही समझ रहे हैं, तीसरा और ये एक तरह से लगातार चलने वाला मोड़ है, वायरल प्रसिद्धि और सोशल मीडिया पर प्रामाणिकता में महारत। 2010 और 2020 में उनके कई अनस्क्रिप्टेड, बिल्कुल नेचुरल मोमेंट्स वायरल हुए,
जैसे वो सॉरी टू दिस मैन वाला क्लिप।
हाँ, और भी कई। लोग उनके निभाए किरदारों से नहीं, उनके असली व्यक्तित्व से, उनके ह्यूमर, उनकी बेबाकी से जुड़ने लगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने उन्हें अपनी कहानी पर, अपने नैरेटिव पर अभूतपूर्व नियंत्रण दिया। अब वो अपनी पब्लिक इमेज बनाने के लिए सिर्फ रोल्स या इंटरव्यूज पर निर्भर नहीं थी। इसने उनकी ऑथेंटिसिटी पर बेस्ड ब्रांड को इतना मजबूत किया कि वो अपने आप में कल्चरल पावर बन गई।
कमाल है। तो के पामर की कहानी सिर्फ शोहरत और कामयाबी की कहानी नहीं है, इसमें जिंदगी के कई गहरे सबक छिपे हैं जो हम सबके काम आ सकते हैं।
निश्चित रूप से। सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक तो यही है, अपनी कहानी का स्वामित्व लेना, नैरेटिव ओनरशिप। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो अपने आप हो जाती है, ये एक सचेत चुनाव है, एक जिम्मेदारी है। इसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है, खासकर आज के डिजिटल युग में जहां दूसरों की राय हम पर इतनी आसानी से हावी हो सकती है।
सही कहा। और दूसरा सबक ये कि प्रामाणिकता और रणनीति साथ साथ चल सकती हैं। मतलब अपने मूल्यों पर टिके रहना, सच बोलना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया की परवाह किए बिना कुछ भी कह दें या कर दें। आप ईमानदार रहते हुए भी समझदारी से अपने कदम चुन सकते हैं, यू नो, स्मार्ट ऑथेंटिसिटी।
बिल्कुल। तीसरा अहम सबक है सफलता को अपने लिए फिर से परिभाषित करना। दुनिया सफलता को शायद पैसे, शोहरत, अवार्ड से मापती है, लेकिन जरूरी है कि हम अपने लिए सफलता के मायने तय करें। केके के लिए सफलता शायद सिर्फ अगला बड़ा प्रोजेक्ट पाना नहीं है, बल्कि वो क्रिएटिव आजादी, अपनी शर्तों पर काम करना, वो भी है।
और जिस तरह से वो अपनी कमजोरियों को ताकत के रूप में स्वीकार करती हैं, ये बहुत इंस्पायरिंग है। चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, PCOS हो, या करियर के उतार चढ़ाव, वो दिखाती हैं कि इंसान होना, अपनी कमियों को मानना, परफेक्ट दिखने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उनकी यही ईमानदारी उन्हें लोगों से जोड़ती है।
बिल्कुल। और आखिर में उनकी कहानी ये याद दिलाती है कि विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमेशा सीधी रेखा में नहीं होती, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, सफलताएं मिलती हैं, असफलताएं भी। खुद को बेहतर बनाने का, खुद को जानने का सफर, वो कभी खत्म नहीं होता। केके आज भी बदल रही हैं, सीख रही हैं, और यही हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है।
तो केके पामर के जीवन और दर्शन की इस पूरी चर्चा से वो 3 सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए?
3 मुख्य निष्कर्ष। पहला, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। देखिए, पब्लिक इमेज और प्राइवेट सेल्फ के बीच हमेशा एक तनाव रहता है, लेकिन अपनी असली कमजोरियों को, अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करने में एक अद्भुत शक्ति होती है। जब आप अपनी यात्रा को परफेक्ट दिखाने के बजाय प्रगति की कहानी के रूप में शेयर करते हैं, तो आप दूसरों को भी अपनी कमियों को स्वीकार करने और आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देते हैं। केके ये दिखाती हैं कि असली ताकत अपनी सच्चाई को अपनाने में है।
बहुत खूब कहा। दूसरा?
दूसरा, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। करियर में विविधता लाना और अपनी कहानी पर नियंत्रण रखना, ये सिर्फ पैशन का नतीजा नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है, होनी चाहिए। केके ने समझा कि सिर्फ एक चीज पर निर्भर रहना रिस्की है। उनका एक्टिंग, संगीत, होस्टिंग, बिजनेस, ये सब अपनी स्वतंत्रता और प्रासंगिकता बनाए रखने का तरीका था। प्रामाणिकता को रणनीति के साथ अपनाना, ये पर्सनल सच्चाई और प्रोफेशनल तरक्की के बीच बैलेंस बनाने का एक बहुत कारगर जरिया है।
स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन।
और तीसरा?
यूनिवर्सल सबक।
और तीसरा, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। आपकी पहचान किसी और की उम्मीदों की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसा कि उनकी किताब कहती है, आई डोंट बिलोंग टू यू, मैं तुम्हारी नहीं हूं। अपनी कहानी का मालिक बनना, ये एक रोजमर्रा का अभ्यास है। ये छोटे छोटे सोच समझ कर लिए गए फैसलों का नतीजा है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाते हैं। और ये बात हर किसी पर लागू होती है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या आम इंसान।
ये अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।